Namo Buddhaya. Jai Bhim. So we're reaching the end of our journey.
तो हमारे यात्रा के अंतिम चरण में हम आ रहे हैं.
We followed the Buddha around the temple site.
जो उस यानी महाविहार का परिसर है, उस सभी परिसर में के स्थलियों को जहाँ बुद्ध थे वहाँ हम गए.
According to the later tradition, we've done 7 weeks.
जो यानी उत्तर परंपरा जो है, बात की जो परंपरा है, उसके हिसाब से 7 सप्ताह उस परिसर के होते हैं.
This is found mainly in the in Buddhaghosa's commentary on the Jatakas.
तो मुख्यतः हमें यह मिलता है बुद्ध घोष में, उन्होंने जो जातक के ऊपर टिप्पणियां लिखी है उसके ऊपर.
But in the original scheme that's found in the Vinaya, this is the 5th week.
तो विनय के हिसाब से यह 5वां सप्ताह है.
So the Buddha's, of course, come from meeting with Tapusa and Bhalika.
तो बुद्ध अभी वो तपुसा और भालिका से मिलकर अभी आ रहे हैं.
And it's quite a significant event for him.
उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण घटना है.
In a way, he hasn't done any teaching to them.
दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने उनको कुछ शिक्षाएं नहीं दी.
He's just there.
वे बस वहाँ है.
And they're deeply impressed by his presence.
और उनके उपस्थिति से वह यानी गहरे प्रभावित है.
And they go away.
वो वहां से दूर जाते हैं.
But it brings to mind the other world, the rest of the world.
लेकिन यह अपने मन में एक दूसरे दुनिया को लाता है.
For the first time, the Buddha is really engaging with other people in a deeper way.
तो पहली बार बुद्ध गहराई से किसी और लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं.
The devotion that these two from Orissa expressed to him is the first time that people have really been open to him.
तो यह जो भक्ति बुद्ध के प्रति ओरिसा के दो व्यक्तियों के प्रति आई, तो वह अपने आप को दुनिया से खुला कर रहे थे, ऐसे प्रतीत होता है.
And you imagine that must mean that the possibility of communicating what he's experienced arises for him.
इसका अर्थ यह होता है कि जो कुछ भी उनमें उगम हो रहा था या हो गया था, उसकी संभावनाएं नजर आती है कि वह संवादित कर पाते थे.
But then as he considers the possibility of communicating, he's faced with the difficulty of it.
तो जैसे ही संवादित करने की जो संभावनाओं के करीब बुद्ध आए, उनको कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई.
People are committed to samsara.
क्योंकि लोग संसार से ही ज्यादा कटिबद्ध थे.
They believe in samsara.
उन्होंने संसार में ही विश्वास रखा.
They take samsara for reality.
उन्होंने संसार को ही सत्यता समझा.
How can he possibly communicate what he's experienced?
तो कैसे वो संभवतः बता सकते हैं जो उन्होंने अनुभव किया?
Sometimes you do get that experience even on our own level.
कभी कभी वह हमारे स्तर पे भी ऐसा अनुभव हमें आता है.
You know, people, for instance, often people misread Baba Sahib.
कभी कभी लोग बाबा साहब को गलत समझते
हैं. They say, oh, Baba Sahib thought that meditation was nonsense.
लोग ऐसा कहते कि बाबा साहब ने बोला कि जो ध्यान है वह बेवकूफी भरा काम है.
Why are you doing meditation? Why not just to get on with social and political work?
क्यों आप ध्यान करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक काम, राजकीय काम आप क्यों नहीं करते?
And you know, sometimes it's really difficult to communicate what meditation is.
अब कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है यह संवादित करना कि ध्यान क्या है.
People have got no corresponding experience.
क्योंकि ऐसा कोई अनुभव लोगों का होता नहीं है.
So for the Buddha it was even greater, the difficulty.
तो बुद्ध के लिए तो समस्या और भी भारी थी.
People were so deeply committed to the world.
क्योंकि लोग बहुत गहराई से संसार में ही कटिबद्ध होते हैं.
You know how much difficulty we have in letting go of our attachment.
हम जानते हैं कि कितना हमें कठिन होता है हमारी आसक्ति को छोड़ना.
And we go for refuge to the Buddha.
और हम बुद्ध को शरणगमन करते हैं.
So for those who know nothing of this, it's really difficult.
तो जब लोगों को कुछ भी पता नहीं है उनको कितना कठिन होता है संसार को त्यागना.
So the Buddha uses some very important words.
तो बुद्ध बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.
There's an account of this in many different places in the Pali Canon.
तो पाली सूत्रों में कई जगह इसके संदर्भ हमें मिलते हैं.
It's not just in the suttas, it's in the Vinaya as well.
विनिया में भी है, यानी पिटक में कई इसके संदर्भ मिलते हैं.
And he says that this state that he's achieved is hard to see.
वो कहते हैं कि यह जो अवस्था मैंने प्राप्त की है उसे कठिन है देखना.
People are so committed to the world.
लोग संसार से ही कटिबद्ध है.
This Dhamma I have discovered is deep, hard to see.
यह धम्म जो मैंने खोजा है या जिसका साक्षात्कार किया है यह गंभीर है और इसे देखना कठिन है.
Hard to understand.
कठिन है इसे समझना.
Peaceful and sublime.
यह शांतिपूर्ण है या शांति व्रत है और
sublime. Exalted.
उच्चतम है.
Not within the sphere of reason.
यह कारण के परिघ में या उसकी सीमा रेखा में नहीं है.
He can't even find the right Hindi word for it.
मुझे अभी शब्द भी नहीं मिल रहा है उसके लिए.
Subtle.
सूक्ष्म है.
To be experienced by the wise.
और जो प्रज्ञावान है या जो समझदार है उन्हीं से ही यह समझा जाएगा.
Beyond the reach of reason.
यह कारणों से या कारण मीमांसा से परे है.
You can't describe it in words.
इसे आप शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते.
Because our words are drawn from the world of conditioned experience.
क्योंकि हमारी जो दुनिया है जो संस्कारित अनुभवों से ही आती है.
So if we're to describe something that's beyond that, where are we to get the words?
तो अगर हमें इसके परे कुछ बताना है या विश्लेषित करना है तो कहाँ से हम शब्दों को लाएंगे?
You can't reason people into understanding.
आप लोगों के We can't reason people into understanding.
We can't use reasoning to get people to understand.
हम लोगों को केवल तर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें समझाने के लिए.
So he thinks, what can I do?
तो वे सोचते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ?
क्या कर सकता हूँ? What can I do? And he's sort of not sure.
तो वे यानी उन्हें पता नहीं अभी ये कैसे संवादित करें.
And we're told that at the same time, Mara appears to him.
और ऐसा बताया गया है कि उसी वक्त मार फिर यानी उनके आगे आता है.
It just doesn't come in the same sequence, but it's clearly connected.
तो उस प्रकार से नहीं आता जैसे वो पहले आता है, लेकिन निश्चित ही इसमें उसका संबंध है.
So Mara simply says, "Why trouble yourself?"
तो मार उनको केवल इतना कहता है, आप अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो?
They're not going to understand.
अब वो उन्हें यानी जो आपने प्राप्त किया वो उन्हें समझेगा नहीं.
If you try to communicate, it'll just be frustration and wasted energy.
और अगर आप इसे करोगे तो आप निराश होगे और आपका यानी समय ऊर्जा बर्बाद होगी.
You've done what you had to do.
आपने जो करना था वो तो कर लिया.
You've conquered संसार.
आपने संसार को जीत लिया.
You've overcome suffering.
आपने दुख को यानी पराजित किया.
Now enter parinirvana.
अभी आप परिनिर्वाण में चले जाइए.
In other words, die.
इसका मतलब आप मर जाइए.
And just fully enjoy nirvana.
और पूरा यानी निर्वाण का आप आनंद लीजिए.
With all that inconvenience of a body.
जहाँ पे शरीर की असुविधा नहीं है.
That inconvenience of other people.
औरों की असुविधा नहीं है.
Other people are so difficult.
क्योंकि लोग भी कठिन है.
Just stop.
आप रुक जाइए.
But the Buddha realizes what Mara is trying to do.
लेकिन बुद्ध ने जाना कि क्या वो मार वहां कर रहा था.
Mara doesn't want people to escape from his realm.
मार नहीं चाहता था कि लोग यानी उनके सीमाओं से मुक्त हो.
So, well, the Buddha still doesn't know what to do.
बुद्ध अभी भी नहीं जानते थे कि अब वे क्या करें.
And he's thinking, well, I'll just go and enjoy this state in solitude.
तो बुद्ध ने सोचा कि मैं अभी एकांतवास में जाऊंगा और मेरे इस अवस्था का आनंद लूंगा.
And at that point, somebody else appears.
और उस वक्त कोई और आता है.
At that point, Brahma Sahampati comes.
तब ब्रह्मा सहम्पति आता है.
Sahampati means the Lord of a thousand worlds.
Sahampati का मतलब हजार ब्रह्मांड का या विश्वों का राजा.
So what is this?
अब ये क्या है?
What is it? Some sort of god like Indra or somebody like that?
क्या यह इंद्रा वगैरह जैसा कोई देव है या ईश्वर है?
Well, in a way, it's difficult to say.
अब वैसे कहा जाए तो इसे कहना कठिन है.
You could say, well, he's the Lord of a thousand worlds.
वो यानी हजारों विश्वों का राजा है.
He's responsible for the universe.
पूरे विश्व के लिए वह जिम्मेवार है, जिम्मेदार है.
So you could say that this is the voice of the universe speaking to the Buddha.
अब ऐसा आप कह सकते हैं कि सारे ब्रह्मांड की जो आवाज है वह बुद्ध के साथ बात कर रही है.
All the suffering, all the strife, all the trouble of the universe speaking to the Buddha.
Tribes, you said?
Strife, all the struggle, struggle.
सारा जो संघर्ष है ब्रह्मांड का वह बुद्ध के साथ मानो बात कर रहा है.
The universe is calling him.
सारी दुनिया या सारा ब्रह्मांड बुद्ध को बुला रहा था.
Don't leave us.
हमें छोड़िए मत.
We need you.
आपकी हमें जरूरत है.
And Brahma says that if you leave, the door of the deathless remains closed.
अगर आपने अभी हमें छोड़ दिया तो जो अमरत्व के जो द्वार है वो हमेशा के लिए बंद रहेंगे.
There's no hope.
कहीं वहाँ आशा नहीं रहेगी.
There's no sky above our heads.
हमारे सर के ऊपर कोई छत नहीं रहेगी, यानी आकाश नहीं रहेगा.
There's nowhere to go.
कहीं हमें जाने के लिए रास्ता नहीं होगा.
We're just trapped in an endless cycle.
हम इस अनंत चक्राकार मार्ग में हम फंसे हुए हैं.
This is what Brahma represents, this voice calling the Buddha to open the door of the deathless.
तो यही वह ब्रह्म संपत्ति की आवाज बताती है कि जो अमरत्व के जो यानी मैं ऐसा कहूंगा मृत्युहीनता के जो द्वार है उन्हें आप खोलिए.
So in the Buddha's mind, this awareness of all the suffering in the universe comes to him.
तो बुद्ध इसके बारे में सजग है कि दुनिया से सभी जो दुख उमड़ रहा है.
The great need of the universe for some perspective, so for some lofty height.
तो ऐसे किसी उच्च आदर्श या दृष्टिकोण की जरूरत दुनिया को है ऐसा उन्हें समझता है.
You know what it's like sometimes when you read the newspapers, when you see what's happening in the world, you think, what hope is there?
तो जब आप अखबार पढ़ते हो या समाचार सुनते हो तो आपको लगता है कि क्या कर सकते हैं, कहाँ कोई आशा की किरण है इस दुनिया में.
For every one good bit of news, there's 10 bad news.
तो एक अच्छी खबर के पीछे 10 बुरी खबरें होती है.
My friends are always telling me the terrible things happening in India.
मेरे दोस्त मुझे हमेशा ये बताते रहते कि कितना यानी घृणास्पद व्यवहार इस देश में होता है.
This act of atrocity, this act of oppression, this act of injustice is so much of it.
तो यहाँ का उत्पीड़न, वहाँ पे अन्याय वगैरह वगैरह ऐसी कई कहानियाँ.
And you can't help thinking sometimes, when will it end?
और आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये सब कब खत्म होगा.
Maybe it can never end. That's what you feel.
आपको ऐसे ही महसूस होता है कि शायद यह कभी भी खत्म नहीं होगा.
Maybe there's no hope.
शायद वहाँ कोई आशा ही नहीं बची है.
Maybe there's nowhere to go.
शायद हमें कहीं जाने के लिए मार्ग नहीं है.
Just enjoy it if you can and get out if you can't.
तो आप अपना आनंद लीजिए और जब आपको जाना है चले जाइए.
Sometimes it seems like that.
कभी कभी ऐसे ही महसूस होता है.
The Buddha exemplifies the highest possibility.
तो बुद्ध जो है इसका उदाहरण पेश करते हैं जो सबसे उच्च संभावनाएं जो हो सकती है वह.
Something beyond all that suffering, all that pain.
इन सभी पीड़ाओं से या दुख से कोई तो भी परे बात.
Something beyond all that struggle.
इस संघर्ष से परे कोई बात.
And if he kept the door of the deathless closed, we would have no perspective in our lives.
अगर उन्होंने वह मृत्युहीनता के द्वार अगर बंद रखे तो शायद हमारे जीवन में कोई आशा ही नहीं बचेगी.
We could just struggle to have things a bit better.
हम इसके लिए संघर्ष कर सकते हैं कि चलो चीजें थोड़ी सी अच्छी होगी.
Just a slightly better political situation.
थोड़ा सा ये जो सत्ता है या राजकारण ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए.
A bit of a better society.
थोड़ा सा अच्छा समाज बन जाए.
But as soon as you resolve one problem, other problems arise.
जैसे ही आप एक समस्या सुलझाते हैं, दूसरी समस्या आ जाती है.
And many people would feel very, very hopeless, helpless.
और बहुत सारे लोग इस प्रकार से यानी आशाहीन हो जाते हैं.
But there is in the universe something that transcends all that.
लेकिन ऐसी कोई तो भी बात है इस विश्व में जो इस बातों को परिवर्तित करती है या इसे भेद कर जाती है.
Beyond birth and death, there is the deathless.
जन्म और मृत्यु के परे मृत्युहीनता है.
And that is what the Buddha proved at Bodh Gaya.
वही बुद्ध ने साबित किया बोध गया में.
If he just experienced it himself and kept quiet, what hope would there be for us?
तो अगर बुद्ध वहाँ चुपचाप या शांत बैठे ही रहते तो हमारे लिए कौन सी आशा होती.
This is what Baba Sahib saw so clearly.
यही बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से देखा.
He saw that merely a political and social struggle didn't resolve anything in the end.
उन्होंने देखा कि केवल राजकीय और सामाजिक संघर्ष सभी चीजों को सुलझाता नहीं है.
It took us somewhat further, yes.
निश्चित ही कुछ विकास उसमें होता है.
At least we might have our people in power.
कम से कम ऐसे हो सकता है कि हमारे लोग सत्ता में आ जाए.
Our people oppressing other people.
हमारे लोग और लोगों का उत्पीड़न करते हो.
But no final resolution.
लेकिन शायद उसका जो अंतिम सुझाव है या हाँ वो नहीं आएगा.
Unless there's something beyond it all, what's the hope?
अगर इन सबसे परे कोई बात नहीं है तो फिर आशा क्या है.
Because the Buddha lived, because the Buddha realized enlightenment, we can have some measure, something to raise us up.
क्योंकि बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, हमारे सामने कुछ परिमाण है जिससे हम अपने उच्चता को माप सकते हैं.
This is what Brahma Sahampati is saying.
यही ब्रह्म सहमपति कह रहा है.
If you don't open the door of the deathless, the world has no hope.
अगर आपने यह मृत्युहीनता के द्वार अगर खोले नहीं तो वहाँ आशा ही नहीं बचेगी.
There's nowhere to go.
हम खोए रहेंगे, गुमराह रहेंगे, कहीं जाने को रास्ता नहीं रहेगा.
We're just stuck in the endless cycle of birth and death.
हम उस निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे.
Still echoing. So the deathless door the Buddha opened there at Bodh Gaya.
तो यह मृत्युहीनता के द्वार बुद्ध ने बोध गया में खोले.
And this is what we're celebrating in our puja tonight.
तो यही इसी का उत्सव हम आज की पूजा में करेंगे.
The sound is all right now. Can you hear at the back? Yeah.
मेरी आवाज.
Good. Very good.
क्या कुशलवीर क्या कह रहे हैं?
Okay, a little bit closer. Yeah, now what?
Abhi theek hai?
Yeah? So let's see what happens then.
Ab aaiye dekhte hain aage kya hota hai.
The Brahma Sahampati makes his request three times.
To Brahma Sahampati teen baar aisi yachna Buddha ko karta hai.
And he shows the Buddha that there is some possibility of communication.
और फिर बुद्ध बताते हैं कि वहाँ कुछ संभावना है यह चीजें संवादित करने की.
He shows that there are some people who have some capacity to understand.
वे वो दिखाते हैं या सोचते हैं कि कुछ लोगों में यह क्षमता है कि यह जो बात है वो समझ पाएंगे.
There are some people whose eyes are a little bit open.
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें खुली है.
And you remember the famous image of the lotus pool.
अब आपको वह प्रसिद्ध प्रतिमा पता होगी कमल कुंज की.
With some lotuses deep buried in the mud.
कुछ जो कमल थे वो कीचड़ में फंसे हुए थे.
Some growing up.
कुछ ऊपर आए हुए थे
and some standing clear of the water with their buds just a little bit open
और कुछ पानी के बाहर उनका उनकी जो कली है वह थोड़ी फूली खिली हुई थी
so it's again a very important image
यह बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा है
people are in different states of development
लोग विकास के भिन्न भिन्न स्तर पर है
and some people have the capacity to understand
और कुछ लोगों में यह क्षमता है कि यह बात को वो समझ पाए
this is very important for us isn't it
यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है
we need to make sure that the dhamma is available to those who are able to hear it
हमने उन लोगों के लिए धम्मा यानी हाजिर करना चाहिए उपलब्ध करना चाहिए जो वो इसे समझ सकते हैं
I remember Bante saying when we were first getting our activities going in London that he thought that there were quite a lot of people with the capacity to understand
तो जब हमने पहले पहले यह गतिविधियां शुरू की लंदन में मुझे याद आता है भंते बताते थे कि कब काफी लोग हैं जो धम्म को समझेंगे
He said sometimes he just sit on the metro and look at people The metro, the underground train.
कभी कभी बनते जो है वो मेट्रो में बैठते थे और लोगों को निहारते थे देखते रहते थे
And he said he sort of look around and say, oh yes, I think that person has some sensitivity.
और वे कहते थे कि हाँ उस यह व्यक्ति थोड़ा संवेदनशील है
That they've got some awareness, some awakeness.
कुछ तो भी जागृति या सजगता इनमें है
They're not just stuck in their own life.
अपने जीवन में वे फंसे नहीं है
And he said his impression was about 10% of people had that immediate openness.
तो वो उनका निरीक्षण ऐसे था कि कम से कम 10% लोग इस प्रकार की सजगता रखते हैं.
That's quite a lot of people.
अब ये बहुत सारे लोग होते हैं.
So if we need to make sure that those 10% hear the Dhamma.
तो कम से कम हम यह बात करें कि उन 10% लोगों तक हम धम्म पहुंचाए
इवन इफ ओनली 10% ऑफ दोज 10% हर्ड द धम्म दैट वुड बी 1% वुडंट इट यस
तो 10% में से 10% लोगों ने सुना तो कम से कम उस जनसंख्या के वो 1% लोग होंगे
एंड दैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस टू द वर्ल्ड
और उससे काफी फर्क दुनिया में आएगा
सो वी नीड टू मेक श्योर दैट द धम्म इज हर्ड By those who've got that capacity to hear.
तो कम से कम हमने यह काम करना चाहिए कि जो लोग धम्म सुनने में सक्षम है वे धम्म को सुने
So the Buddha says eventually agrees that he will teach.
तो अंततः बुद्ध इस बात के लिए मंजूरी दे देते सहमत हो जाते कि हाँ मैं धम्म सिखाऊंगा
And he says these immortal words.
और यह अमर शब्द बुद्ध कहते हैं
Open are the doors of the deathless.
मृत्युहीनता के द्वार खुले हैं.
Let those who have ears put forth faith.
जो लोग सुन सकते हैं या श्रवणशील है put forth faith.
Yes.
वे श्रद्धा को उजागर करें.
So yes, the doors of the deathless are open.
तो मृत्युहीनता के द्वार खुले हैं.
What you need is faith. And ears.
आपको भी दो ही चीजों की जरूरत है आपकी श्रद्धा और आपके कान
You need to listen.
आपको सुनना है
And you need to listen with faith.
और आपको उसे श्रद्धापूर्ण होकर सुनना है
Because when the Buddha speaks, it's not just the words that you need to listen to.
तो जब बुद्ध कहते हैं तो केवल उनके शब्दों को ही सुनना नहीं है
You need to listen to what is behind those words.
आपको सुनना है कि उन शब्दों के पीछे क्या है
You know, when you read a poem, if you just analyze each word in the poem, you don't get the meaning of the poem.
जैसे आप कभी कविता को सुनते या पढ़ते तो कविता के हर शब्द का आप विश्लेषण करते लेकिन कविता का वास्तविक अर्थ हम नहीं पकड़ पाते
You need to listen to the poem with imagination.
आप उस कविता को अपनी कल्पना से सुनना होता है
And then it reveals its meaning to you.
फिर इसके अर्थ को वह खोलता है
सो इफ यू गॉट द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द धम्म लिसन विद फेथ
तो अगर आपकी क्षमता है धम्म सुनने की तो उसे फिर श्रद्धा से सुनिए
दैट्स व्हाट द बुद्धा आस्क्स ऑफ अस
तो यही बुद्ध ने हमें अनुरोध किया है
ही आस्क्स अस टू लिसन टू हिम एंड टू अराउज आवर फेथ
तो उन्होंने कहा कि धम्म को सुनिए और अपने श्रद्धा को उजागर कीजिए
And if we do, then we will make progress.
और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना विकास करते हैं
So this is a very, very important incident in the history of our lives.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन के इतिहास में.
We are here because the Buddha taught.
हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि बुद्ध ने धम्म को सिखाया.
It whatever really happened, we don't know.
अब वाकई में क्या हुआ हमें पता नहीं.
This is the way in which it's expressed.
इसी पद्धति से यह अभिव्यक्त होता है.
But clearly it's repeated so many times in the Pali Canon, it must represent something that actually happened.
तो कई बार ऐसा यानी त्रिपिटकों में आता है तो इसका अर्थ कोई तो भी महत्वपूर्ण घटना हुई होगी.
That the Buddha must have felt, I can't communicate this.
बुद्ध को वाकई में ऐसे महसूस हुआ होगा या लगा होगा कि अभी मैं ये बिल्कुल पढ़ा नहीं सकता.
I don't know what my life would have been if he hadn't.
अब मुझे पता नहीं मेरा जीवन क्या होता अगर बुद्ध ने पढ़ाया नहीं होता.
I remember so clearly what my life was like before I encountered the Dhamma.
मुझे पता है मेरा जीवन कैसे था जब तक मैं धम्म के संपर्क में नहीं आया.
Quite a strong sense of the futility of life.
जीवन का व्यर्थता का ही भाव मेरे पास था.
You're born, you struggle, you die.
आप पैदा होते संघर्ष करते मरते.
Why?
क्यों?
I couldn't find an answer.
मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा था.
And I felt quite sort of hopeless, helpless.
और मुझे आशाहीन लगता था और निराश लगता था.
And then I encountered the Dhamma.
फिर मैं धम्म के संपर्क में आया.
And the Dhamma just opened a vast perspective.
और धम्म ने मेरे लिए ऐसे विशाल दृष्टिकोण खोले.
I tried to practice Christianity.
मैंने कोशिश की ईसाई धर्म को आचरण करने की.
I just couldn't believe in it.
मैं इस पे विश्वास नहीं रख पाया.
And without the Dhamma, I would have no perspective in my life.
और धम्म के अलावा मेरे जीवन में कोई दृष्टिकोण नहीं होता.
Nothing to put my whole energy into.
सारी शक्ति मैं कहाँ लगाता ऐसा यानी मुझे समझ में नहीं आता.
I remember Bhante saying that if he hadn't encountered the Dhamma and gone for refuge to it, he thinks he would have gone mad.
बंते ऐसे बताते कि अगर मैं धम्म के संपर्क में नहीं आता और धम्म का शरण गमन नहीं करता तो शायद मैं पागल हो जाता.
He said he felt that there were such contradictory forces within him that they would have destroyed themselves.
तो बंते ऐसे बताते कि उनमें ऐसे विरोधाभासी बल थे अपने आप में शायद उन्होंने उन्हें खत्म कर दिया होता.
Bhante is a very rich and complex man.
Bhante काफी सुलझे हुए और क्लिष्ट व्यक्ति है.
And without the Dhamma, there's nothing to hold it all together.
और यह सारी चीजों को इकट्ठा रखना धम्म के बगैर नामुमकिन है.
And I'm sure many of you can recognize what I'm talking about.
और आप में से कई लोग शायद इस बात को पहचान पा रहे हो कि क्या मैं कह रहा हूँ.
I've personally been looking for something to dedicate myself to all my life.
मैं भी अपने आप को देख रहा था कि मैं किसको या किसे मैं मेरा जीवन यानी दे दूं या शरण गमन करूं.
If the Buddha had not opened the doors of the deathless, what would I have done?
अगर बुद्ध ने मृत्युहीनता के अगर द्वार खोले नहीं होते तो मैं क्या करता.
I don't think it would have been very good.
शायद यह अच्छी बात नहीं होती.
So without the Buddha's opening the doors of the deathless, the lives of so many people would be helpless.
अगर बुद्ध ने यह मृत्युहीनता के द्वार खोले नहीं होते तो कई लोगों के लिए जीवन आशाहीन होता.
And it gives us something with which we can face the terrors of the world.
और यह हमें वह बात देता है जिससे हम इस दुनिया के आतंक का सामना कर सकते हैं.
You know, you read the newspapers, you see what's happening in Syria today.
अब आप अखबार देखिए सीरिया में क्या हो रहा है.
It must be hell in Syria.
वहाँ नरक होगा सीरिया में.
And then it's hell even in places in India, it's even in places in England.
भारत में भी ऐसे नरक है, इंग्लैंड में भी ऐसे नरक है.
It must be for some people just hell.
बहुत सारे लोग ऐसे नरक में जीते.
But the Dhamma gives us hope.
लेकिन धम्म हमें आशा देता है.
The perspective that the Buddha brought into the world here at Bodh Gaya gives us hope for the world.
तो जो दृष्टिकोण हमें इस बोध गया में मिलता है वह हमें आशा देता है जीवन में.
So it's tonight when we reflect on that, I'm sure great gratitude will arise in our minds.
तो इस पर अगर हम आज चिंतन करते हैं बोधि वृक्ष के तले तो एक विशाल महान कृतज्ञता हमारे मन में उत्पन्न होगी.
So this was under the Ajapala Nigrodha tree again.
तो यह दोबारा अजपाल निग्रोध ट्री के तले हुआ.
Again, this is where the Dhamma revolution started.
वही जगह जहां धम्म क्रांति की शुरुआत हुई.
And you could say this is part of that Dhamma revolution.
और आप कह सकते हैं यही अंग है उस धम्म क्रांति का.
But that wasn't the end of it.
लेकिन यही पे इसकी समाप्ति नहीं होती.
Something else happened under that tree.
और कुछ घटित हुआ उस वृक्ष के तले.
The accounts don't make it quite clear in what order all this happened.
तो संदर्भों में या जो भी हम पढ़ते ग्रंथों में यह स्पष्ट नहीं होता कि इसकी श्रृंखला घटित होने की क्या थी.
But I imagine it was this point.
लेकिन मुझे मैं कल्पना करता हूँ कि शायद इस बिंदु पर यह बातें हुई होगी.
This point the Buddha maybe at the point of setting out to teach the Dhamma thinks, well, I need to rely on somebody.
तो यहाँ बुद्ध अपनी शुरुआत ऐसे करते कि किसी के तो भी ऊपर मुझे निर्भर होना है.
I need to look up to somebody.
ऐसा कोई चाहिए जिसके ऊपर या जिसको मैं अपने से श्रेष्ठ देख पाऊं.
He says not to have anybody to look up to, not to have anybody to rely on is painful.
वो कहते हैं कि किसी के भी ऊपर निर्भर न होना यह पीड़ादायक है.
Well, that's true, isn't it? We know that.
यह सत्य हम जानते हैं.
If you don't have a teacher you can rely on, well, you're sort of lost.
अगर ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसके ऊपर हम निर्भर हो सके तो हम गुमराह होते खो जाते.
You don't know what to do.
हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है.
And again, I remember my own early encounter with the Dhamma.
और फिर से मुझे याद आते हैं जब मैं पहले धम्म के संपर्क में आया.
I discovered the Dhamma through books.
मैंने किताबों से धम्म को ढूंढा.
And of course, I got very confused by all the books I read.
और जो भी किताबें मैंने पढ़ी उससे मैं संभ्रमित हुआ.
I tried to meditate by myself.
मैं स्वयं ही ध्यान करने की कोशिश करता था.
But I just tied my head up in knots.
लेकिन मैंने ऐसी कई गांठें अपने दिमाग में बांध दी थी.
What to do?
अब क्या करना.
I needed somebody to make the Buddha's message effective for me.
मुझे कोई तो भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यह बुद्ध का संदेश है मेरे लिए प्रभावी कर सके.
And that's what our teacher Urgyen Sangrakshit did for me and did for all of us.
यही भंते संगरक्षित जी ने मेरे लिए किया और हम सब के लिए किया.
उर्गेन
संगरक्षित जी ने किया और मेरे लिए किया और हम सब के लिए किया.
That's what Bhante says he would like to be called, Urgyen Sangrakshit.
भंते ऐसा कहते हैं कि उर्गेन संगरक्षित कहना उन्हें अच्छा लगता है.
So he has made the Buddha's teaching digestible for us.
तो जो बुद्ध के शिक्षाएं हैं वह हमारे लिए हम उन्हें पचा सके उसके काबिल उन्होंने उन्हें बनाया.
And without that, we're lost.
उसके बगैर हम खो जाते हैं.
You can go to bhikshus, but often they don't know what they're talking about.
आप भिक्षु के पास जा सकते हैं लेकिन अक्सर पता नहीं होता वो क्या कहते हैं.
Of course, there are other teachers, and maybe we could have gone to them.
दूसरे गुरु हैं उनके पास हम जा सकते थे.
But we came to Urgyen Sangrakshit.
लेकिन हम उर्गेन संगरक्षित के पास आए.
And he made the teaching digestible for us.
और यह जो शिक्षा है उस शिक्षा को हमें समझने योग्य उन्होंने बनाया.
He enabled us to practice the Buddha's teaching.
उन्हें हमें इस काबिल बनाया कि हम बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण कर सके.
So we definitely know that it's painful not to have somebody to rely on.
तो निश्चित ही हम जानते हैं यह पीड़ादायक है अगर किसी के ऊपर निर्भर हम न हो पाए तो.
So as the Buddha is about to set out on his teaching mission, he thinks, who am I going to rely on?
तो बुद्ध अपने शिक्षा की यानी जो शुरू करने के पहले उन्होंने सोचा कि किसके ऊपर मैं निर्भर हो सकता हूँ.
So he reflects.
तो उन्होंने चिंतन किया.
He reflects on the whole world.
सारी दुनिया के ऊपर उन्होंने चिंतन किया.
And he realizes there's nobody who's perfected in morality as he is.
और उन्होंने देखा कि उनके जैसा शीलों में पारंगत कोई नहीं है जितने वे स्वयं है.
There's nobody who's fulfilled meditation as he has done.
और जिस प्रकार से उन्होंने समाधि की संपूर्ति की है ऐसा भी कोई नहीं है.
There's nobody who's fulfilled prajna as he has done.
और जितनी प्रज्ञा की परिपूर्णता उन्होंने हासिल की है वैसा भी कोई नहीं है.
And so on.
और इत्यादि.
He realizes that he's gone further than anybody else.
तो उन्होंने यह देखा या इसका साक्षात्कार किया कि सभी से वे कई आगे जा चुके हैं.
There's no human being, no non-human being he can look up to.
तो ऐसे कोई मानव नहीं है और ऐसे कोई अमानव सजीव भी नहीं है जिनके ऊपर वह निर्भर हो सके.
He's on his own.
वे अपने आप में अकेले थे.
But then he realizes he's not on his own.
लेकिन फिर उन्होंने यह जाना कि वे अपने आप अकेले नहीं है.
He has the Dhamma.
उनके पास धम्म है.
And he can rely on the Dhamma, he can look up to the Dhamma.
तो वे धम्म के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, धम्म को एक आदर युक्त देख सकते हैं.
Now it's very, very interesting.
यह बहुत रोचक है.
In a way you tend to think, well, why does the Buddha need something to look up to?
तो अभी हम सोचने में मजबूर होते कि क्यों बुद्ध को भी जरूरत पड़ी किसी के ऊपर निर्भर होने की.
We teach that the Buddha is a supreme being.
हम सिखाते हैं कि बुद्ध सर्वोत्तम पुरुष है.
Anuttarang, we say in the Tiratana Vandana.
अनुत्तरंग हम कहते हैं तीरत्न वंदना में.
There's nobody higher than him.
उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है.
So why does he need something to look up to?
तो क्यों उन्हें चाहिए कोई उनके ऊपर या उच्च श्रेणी में.
But the way I think about this is that even though he was a Buddha, he still had a human body.
तो मैं ऐसे सोचता हूँ इस बात को कि भले ही वे बुद्ध थे लेकिन उनके पास मानवीय शरीर था.
He'd no longer identified with it.
निश्चित ही उससे उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई.
But it was still there.
लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ थी.
He had all the senses, all the mental apparatus of a human being.
तो जो भी मानवीय शरीर की संवेदनाएं होती है वह सारी उनके पास थी.
He still got to live in the world.
उनको उसके बावजूद भी इस दुनिया में जीना था.
Unless he just dies, enters parinirvana, he's got to have some basis for life.
जब तक वो परिनिर्वाण में प्रवेश नहीं करते उनको जीने के लिए कुछ बुनियाद चाहिए थी.
We live for the sake of our own ego identity.
हम हमारे अहंकार के प्रति यानी उसके लिए हम जीते हैं.
Our lives are lived from the basis of self.
हमारी जो जिंदगी है वह स्व के बुनियाद के आधार पर जी जाती है.
Hopefully we're trying to make that into something more creative, more positive.
आशा है कि उससे अधिक हम सृजनात्मक हो सकते हैं.
But in the end, everything comes back to I.
लेकिन अंततः हर चीज स्व पे आकर रुकती है.
The Buddha's dropped that self-attachment.
और बुद्ध ने यह स्व आसक्ति को त्याग दिया था.
So what's to make him work?
तो कौन सी बात है जो उन्हें चलाती थी या संचारित करती थी.
What makes him get out of bed in the morning?
कौन सी बात है जो उन्हें सुबह उठाती थी.
What makes him eat his food?
क्या चीज उनको खाना खिलाती थी.
What makes him go through the day?
दिन भर वो क्या करते थे.
What directs him? What motivates him?
कौन सी बात उन्हें चलाती है.
It's not self.
यह स्व नहीं था.
Well, it's Dhamma.
वह धम्म था.
It's the Dhamma working through him.
यह धम्म ही उनके द्वारा कार्यरत होता था.
In later tradition, this was called Bodhicitta.
बाद के परंपराओं में या उत्तरी परंपराओं में इसे बोधिचित्त कहते हैं.
That is the spirit of compassion that as it were, motivates one to liberate all beings.
यह करुणा की चेतना है जो प्रेरित करती है उन्हें अन्य मानवों को या सजीवों को मुक्त करने के लिए.
Here it's spoken of as the Dhamma.
ऐसे धम्म को कहा गया है.
The Buddha has realized the Dhamma.
बुद्ध ने धम्म का साक्षात्कार किया.
This doesn't mean a teaching.
इसका अर्थ शिक्षाएं नहीं.
It doesn't mean words.
और इसका अर्थ शब्द नहीं.
What it does mean, it's very difficult to say.
अब इसका अर्थ क्या होता है इसे कहना काफी कठिन है.
Because it's beyond words.
क्योंकि यह शब्दों से परे है.
Atarkavacharo, beyond the reach of reason.
यह अतर्कवचरो है वह कारणों से परे है.
But you could think of it more like a sort of force.
आप ऐसा इसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का बल है.
This is how the bodhicitta language speaks of it.
तो बोधिचित्त की भाषा इस प्रकार से बात करती है.
When we realize the Dhamma, it becomes the force that drives us.
तो जब हम धम्म का साक्षात्कार करते हैं तो हमें प्रेरित या संचारित करने के लिए वह बल बनता है.
It moves us.
यह हमें प्रेरित करता है, चलाता है.
This is the Dhamma Niyama.
यह धम्म नियम है.
It's the processes that arise when we realize the Dhamma.
यह वह प्रक्रियाएं तब उत्पन्न होती है जब हम धम्म का साक्षात्कार करते हैं.
When we realize there is no fixed self, then the Dhamma flows through us.
तो जब हम इसका साक्षात्कार करते हैं कि वहाँ नित्य स्व नहीं है, तब हमें धम्म चलाता है.
The Dhamma uses our body.
धम्म हमारे शरीर का इस्तेमाल करता है.
It uses our emotions.
हमारे भावनाओं का इस्तेमाल करता है.
It uses our intellect.
हमारे बुद्धिमत्ता का वह इस्तेमाल करता है.
It uses our will.
हमारे इच्छाओं का वह इस्तेमाल करता है.
In order to benefit all.
इसलिए कि ताकि सभी का कल्याण हो.
And we give ourselves, we give our conditioned being to the Dhamma.
ताकि हमारे अस्तित्व को हम धम्म को सौंप सके.
And that's what the Buddha decided he must do.
और यह बुद्ध ने यानी ठाना या निर्णय लिया कि ऐसा ही वे करेंगे.
There is nothing within the condition that he could serve. There was nothing within the condition that he could serve.
संस्कारिता में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको जिसकी वो सेवा न कर पाए.
He could only serve the Dhamma.
संस्कारिता में ऐसी कोई बात नहीं थी जिनके अधीन वे हो वो केवल धम्म की ही सेवा कर सकते थे.
The Dhamma would work through him for the benefit of all.
तो धम्म उनके द्वारा कार्यरत कार्यान्वित होता है सभी के कल्याण के लिए.
So then he reflected, who can I teach?
फिर उन्होंने चिंतन किया कि किसको वो पढ़ा सकते हैं.
He thought first of his two teachers, Alara Kalama and Udaka Ramaputra.
तो सबसे पहले उन्होंने अपने दो शिक्षकों के बारे में सोचा, अलार कलाम और उदक रामपुत्र.
Interesting, you could say in gratitude he wanted to communicate to them.
ऐसा भी आप कह सकते हैं कि कृतज्ञता के भाव से वो उनको पढ़ाना चाहते थे.
They were part of his journey. They contributed to his journey.
वे उनके यात्रा का हिस्सा थे इसलिए वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे.
So he wanted to communicate his realization to them.
तो अपना साक्षात्कार वो उन्हें बताना चाहते थे.
But then he discovered, he realized that they died as it happened the day before.
फिर उन्होंने खोजा कि उनकी मृत्यु हो गई थी.
And then he thinks of his five former disciples.
फिर उन्होंने अपने पांच जो उनके सहकारी थे उनके बारे में सोचा.
You remember who'd rejected him.
उन्होंने याद किया कि उन पांच सहकारियों ने उन्हें नकारा था.
But again, he was a friend.
लेकिन फिर से वो उनके मित्र थे.
They'd been his companions.
वे उनके सहचारी थे.
They'd worked together.
उन्होंने इकट्ठा काम किया.
They'd practiced together.
उन्होंने इकट्ठा आचरण किया.
So the Buddha feels his gratitude, his friendship for them.
तो अपनी कृतज्ञता और अपनी मैत्री बुद्ध ने उनके प्रति महसूस की.
And it's interesting that later he goes to Kapilavastu to communicate to his own family.
और उसके पश्चात वे कपिलवस्तु भी जाते हैं अपने परिवार के लोगों को सिखाने के लिए.
His response is a grateful one.
क्योंकि उनके जो प्रतिसाद है वह धन्यवाद मूलक है.
They put so much in his bowl.
बहुत सारी चीजें उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में डाली.
Now he wants to give them what comes from his bowl.
अब उस भिक्षा पात्र से जो आता है वो उन्हें देना चाहते थे.
This deathless food.
यह मृत्युहीनता का खाद्य.
So he thinks of his five former disciples and he intuits where they are.
तो उन्होंने उन पांच अपने सहकारियों को ढूंढा और उन्होंने खोजा कि वे कहाँ हैं.
And he goes in search of them.
और उनकी खोज में वो जाते हैं, निकल पड़ते हैं.
He walks all the way to Sarnath.
यहाँ से पूरा रास्ता वो सारनाथ तक चल के जाते हैं.
But we must leave him there.
तो you mean Buddha, right?
Yes.
अब हम बुद्ध को यहाँ हमने छोड़ देना चाहिए.
And maybe we'll continue when we have our center more active in Sarnath.
तो शायद हम अधिक सक्रिय होंगे जब हमारा दूसरा केंद्र सारनाथ में सक्रिय होगा.
For the time being, we'll have to leave him walking from Bodhgaya to Sarnath.
अभी हम उनको बोधगया से सारनाथ तक जो उनकी यात्रा है उसके लिए हम उन्हें छोड़ देते
हैं. As Bhante did when he was seeking ordination.
तो भंते ने वह किया जब वे अपने दीक्षा को ढूंढ रहे थे.
He said he walked through a curtain of fire because it was so hot.
क्योंकि वो उन्हें ऐसे लगा कि मानो वो आग के पर्दे से चल रहे हो क्योंकि बहुत गर्मी थी तब.
So we'll leave the Buddha on that journey to Sarnath.
तो बुद्ध को उस सारनाथ की यात्रा में अभी हम छोड़ देते हैं.
And we return to reflection on the significance of what happened on this fifth or eighth week under the Ajapala Nigrodha.
तो हम इस बात पर अभी चिंतन करते हैं कि जो कुछ भी यह पांचवें या सातवें सप्ताह में हुआ अजपाल निक्रोध वृक्ष के तले.
Not सातवें, आठवें, eighth.
आठवें सप्ताह के पे जो हुआ वह.
And well, first of all, of course, he resists Mara's temptation.
उन्होंने जो मार की जो उत्तेजना थी उसे नकारा.
He resists Mara's temptation to just make himself content. He resists Mara's temptation to make himself content.
तो उन्होंने मार के उत्तेजना को नकारा अपने आप की संतुष्टि के लिए.
And he responds to Brahma Sahampati's request to teach the Dhamma.
और उन्होंने प्रतिसाद दिया जो ब्रह्म सहमपति ने उन्हें याचना की थी उसके प्रति.
He opens the door of the deathless.
उन्होंने जो मृत्युहीनता के द्वार है उन्हें खोले.
And he puts his human existence at the service of the Dhamma.
और उन्होंने अपने अस्तित्व को धम्म की सेवा में लगा दिया.
Replacing self as a motivation is Dhamma.
उन्होंने स्व को बदल दिया या स्थानांतरित किया धम्म से अपनी प्रेरणा के लिए.
This is what we have to do.
यही हमें करना है.
We have to do it as much as we can even now.
जितना अधिक हो सके उतना हम इसे करें.
The more and more we put our lives at the service of the Dhamma, the more we'll overcome self-attachment.
तो जितना अधिक हम धम्म की सेवा करेंगे उतनी ही हम स्व आसक्ति को त्यागेंगे.
That means, of course, practicing the Dhamma ourselves.
इसका अर्थ हम स्वयं धम्म का आचरण करें.
So that we do overcome self.
ताकि हम स्व को परिवर्तित करें.
And it means sharing the Dhamma with others.
और इसका अर्थ धम्म को अन्य लोगों के साथ बांटे.
That's the example the Buddha has set us here at the Ajapala Nigrodha.
तो यही उदाहरण या आदर्श बुद्ध ने हमारे समक्ष रखा अजपाल निग्रोध वृक्ष के तले.
So from our point of view, what happened there on the last week is the most important thing.
तो हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो आखिरी सप्ताह में जो वहाँ हुआ वह काफी महत्वपूर्ण है.
That's where the Buddha decided to communicate.
वही बुद्ध ने निर्णय लिया कि मैं अभी धम्म को संवादित करूंगा.
So I hope that during these six days we've got a much clearer idea of who the Buddha is.
तो इन छह दिनों में शायद हमें अधिक स्पष्ट जानकारी या समझ आई होगी कि बुद्ध कौन थे.
And what he's done for us.
और उन्होंने हमारे लिए क्या किया.
And I hope that has awakened in us a greater sense of gratitude.
और मैं आशा करता हूँ कि इससे अधिक कृतज्ञता हम में उजागर हुई होगी.
And of course the best way we can express our gratitude is by practicing his teaching and sharing it with others.
और सबसे अच्छा तरीका है उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति का कि हम धम्म का आचरण करें और अधिक से अधिक लोगों में इसे बांटें.
नमो बुद्धाय. जय भीम.